तो वैराग्य कैसे आए? हमें राग कब पैदा होता है? किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में राग पैदा होता है ना, उसमें आसक्ति पैदा होती है, वो पसंद आता है, तो उसके अंदर राग कब पैदा होता है? किसी वस्तु से भी, किसी व्यक्ति से भी राग तब होता है जब मन में ये बात आती है कि इससे मुझे सुख मिलेगा। और जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से ज्यादा या बड़ा सुख मिलने की उम्मीद हो, उसे ज्यादा राग हो जाएगा, उसकी आपको ज्यादा जरूरत महसूस होगी। इसीलिए उससे संबंध बनाने के लिए या उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपकी कोशिश भी, जितना राग गहरा होगा उतनी कोशिश भी आपकी गहरी होगी, उतनी दिल से कोशिश करोगे, लगन से कोशिश करोगे। तो इसीलिए संसार में राग कैसे किया जाए इसको सिखाने की जरूरत ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली सारी प्रकृति का चक्र इस राग के अनुसार ही चल रहा है। चाहे पशु पक्षी देख लो, चाहे मनुष्य देख लो, सब जो है राग करके एक दूसरे से अटैच्ड है और सबका पालन भी हो रहा है। लेकिन जब ईश्वर की बात आती है, ईश्वर के सिमरन की बात आती है, ईश्वर की भक्ति की बात आती है, तो ईश्वर में हमारा राग नहीं होता। राग प्राप्त करने के लिए, या यूं कह लें कि ईश्वर से प्रेम करने के लिए, क्योंकि ईश्वर के लिए राग शब्द इस्तेमाल नहीं होता, प्रेम शब्द इस्तेमाल होता है, तो ईश्वर से प्रेम करने के लिए हमको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े सत्संग सुनने पड़ते हैं, बड़े शास्त्र का स्वाध्याय करना पड़ता है, प्रभु प्रेमियों का संग करना पड़ता है, तब धीरे धीरे ईश्वर का महत्व बुद्धि में बैठने लगता है, समझ में आने, बात आने लगती है। फिर जब किसी पूर्ण गुरु पर, पूर्ण ऋषि पर जब भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो फिर उसकी बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी संसार में सत्पुरुष हुए, उन्होंने इस संसार में राग नहीं किया, इस संसार में उनको सुख दिखाई ही नहीं पड़ा। दुनिया के जितने सत्पुरुष हुए, एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, उनको इस संसार में सुख दिखाई ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए उन्होंने जितनी भी बात की है वो वैराग्य की है। महाराज जी ने भी स्थाई सुख की बात की है संतविलास में, या परम सुख की बात की है। सुख शब्द का इस्तेमाल इंद्रिय भोगों के लिए नहीं किया है। जो सुख हम संसार में प्राप्त करते हैं एक दूसरे के साथ रहकर, यदि वो सुख की बात करते हैं तो कहते हैं परम सुख, अपार सुख या स्थाई सुख, जो कभी भी दुख में बदल नहीं सकता। मनुष्य वास्तव में उसी सुख की तलाश में है जो कभी भी दुख में नहीं बदल सकता, लेकिन उसका पता नहीं है उसको मिलेगा कहां से। उस सुख की तलाश वो वस्तुओं में करता है, व्यक्तियों में करता है। सुख से मिलता तो है लेकिन दुख में बदल जाता है। जैसे कि सुबह से शाम तक आपने पैसे की कमाई करी, तो पैसा जब पास में आता है, ग्राहक जब पास आता है, तो एक मन में खुशी की लहर दौड़ती है। लेकिन यदि सुबह से लेकर रात्रि तक की जो आपने दौड़ लगाई है पैसा कमाने के लिए, पूरी दौड़ देखी जाए तो आपको पता लगेगा ये जो सुख की लहरें थी ये तो बड़ी कम मिली हमको, बेचैनी की लहरें हमको दिन भर में ज्यादा मिली। इसलिए जब घर लौट के आता है तो एक उस दिमाग पे प्रेशर होता है, एक थकान होती है, कहता है घर जाके मुझे चैन मिलेगा। तो घर में चैन की आशा लेकर वो प्रवेश करता है। और कुछ घरों में ऐसा क्लेश होता है कि चैन की आशा लेकर प्रवेश करता है और वहां बाहर से ज्यादा बेचैनी मिल जाती है उसको, पत्नी की डिमांड खड़ी हो गई या कोई और कलह क्लेश हो गया तो वहां का भी चैन गया उसका। हर जगह वो चैन की आशा करता है लेकिन ज्यादातर वो धोखा खाता है, बेचैनी, थकान, परिश्रम इसमें लगा रहता है। चैन के क्षण बहुत कम आते हैं उसके, उसके 24 घंटे के प्रोग्राम में चैन के क्षण बहुत कम आते हैं, लेकिन इस दृष्टि से कोई देखता नहीं है इसको। सुख की आशा में लंबा दुख सहन करता है। मान लिया हम अपना जन्म से लेकर आज तक का जीवन जरा एक निगाह डाल लें कि जिसको सत्पुरुष कह रहे हैं ये संसार दुख रूप है और मैं कहता हूं ये सुख रूप है, तो जरा हम आज तक के जीवन पे तो निगाह डाल ही सकते हैं, आगे का तो हमको पता नहीं है। बचपन में जब तक मेरी आयु 5-6 वर्ष की हुई मुझे तो अपना कोई होश ही नहीं था, क्या ठीक है क्या गलत है, जैसे मन चाहा मैं करता रहा, जैसे मन चाहा शैतानी करता रहा, जब चाहा किसी वस्तु के लिए रोता रहा, घर वालों को भी परेशान करता रहा। तो सारे माता पिता जानते हैं कि 5-6 साल तक के बालक को पालना कितनी टेढ़ी खीर है, कितना कठिन काम है, तो माँ ही जानती है असल रूप में, तो माँ जानती है। तो एक बालक जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ माता पिता को कष्ट मिलना शुरू हो जाता है। बच्चे को 9 महीने गर्भ में पालना, केयर करना उसकी, समझनी, अभी संसार में नहीं आया वो, ये माता पिता जानते हैं कि कितनी केयर करनी पड़ती है। वो सुख के दिन है या फिजिकली दुख के दिन है, जरा विचार करके देखो। उसके बाद आशा करते हैं कि बालक घर में आएगा, सुख देगा, उसको देखकर सुख मिलेगा, लेकिन 5-6 साल तक तो माता पिता को होश ही नहीं रहता, उसको पालते ही रहते हैं, और कितनी कठिनाई से पालते हैं जरा अब विचार करके देखो। रात की नींद भी छोड़ते हैं अपनी, दिन का चैन भी छोड़ते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां भी सबकी सुननी पड़ती है क्योंकि टाइम बच्चे के पालन में लगा नहीं आपने। यदि क्रच में डाल दें तो उसका भविष्य खराब होता है बच्चे का, उसके संस्कार खराब होते हैं। तो बड़ी जद्दोजहद करके, बड़ी कोशिश करके बच्चे का लालन पालन होता है। उसके बाद जब बच्चे को अपना होश आता है तो हर बच्चे को खेल प्रिय होता है, हम सब जानते हैं। सबसे प्रिय उसका जो यदि सुखदायी कोई चीज है तो खेल है उसका, लेकिन माता पिता उसको स्कूल में डाल देते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं उसे, खुद पढ़ाएं तो खुद भी इंगेज रहते हैं। तो अब वो बालक जिसको खेल प्रिय है नहीं, अंदर से कितना दुखी होता होगा जरा विचार करके देखें। उसका तो बचपन आप छीन रहे हैं, मौज मस्ती का बचपन था उसका, स्वतंत्रता का बचपन था, आपने उसको पराधीन बना दिया, लेकिन वो क्या कहे आगे। और जरा होश आती है, भविष्य की होश आती है जब उसको, जहां वो 9th 10th तक आता है उसको भविष्य दिखाई पड़ने लगता है कि आगे चल के मैंने क्या बनना है, मेरा क्या होना है, क्योंकि सब संसार को देखता है वो। तो उस दौड़ को देख देख कर, लोगों को देख देख कर उसकी अपनी दौड़ 25 साल में जाके खत्म होती है, कम से कम इतना आयु तो हो ही जाती है कमाने लायक बनने के लिए, समझ नहीं, परिवार बसाने के लायक आयु जो है 25 वर्ष तो लगभग हो ही जाती है, किसी किसी की 30-30 वर्ष आयु हो जाती है। तो तब जाकर उसका बिजनेस खड़ा होता है या जॉब खड़ा होता है या कोई फाइनेंशियल जो कुछ भी اس کی انکم ہے سمجھیں, وہ کمانے لائق وہ ہوتا ہے. تو یہ خوشی کے دن تھے اس کے, بھری جوانی کے دن تھے. لیکن کس تناؤ میں ودیارتھی ویتیت کرتا ہے ذرا وچار کر کے دیکھو. ہر کلاس جب وہ پاس کرتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ چلو ایک کلاس تو ہم آگے بڑھے, یہ بوجھ تو کم ہوا. یہ خوشی کے دن ہے یا چنتا فکر کے دن ہے؟ کسی بوڑھے ویکتی سے پوچھو تو کہے گا کیا جوانی کے خوشی کے دن ہے, دیکھو کیسا بالک چہک رہا ہے, کیسا یوا دیکھو چھلانگے مار رہا ہے. لیکن یوا سے پوچھو اس کے سر پہ کتنا بڑا بوجھ ہے بھوشیہ کا. بوڑھے کا بھوشیہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن جوان کا تو بھوشیہ کھڑا ہوا. تو بھوشیہ کا بوجھ لے کر سر پر وہ گھوم رہا ہے, سمجھ دل کی کس سے کہے. تو اس حالت میں ہماری جو سب سے خوشی کی جوانی ہے وہ چھن جاتی ہے ہم سے. چلو بزنس بھی ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, پریوار سامنے آ گیا. کتنے لوگوں کا سکھی پریوار ہوتا ہے, کتنے لوگوں کی من انکول شادی ہو پاتی ہے, ذرا وچار کر کے دیکھو. شادی ہو بھی گئی پھر نئی ذمہ داریاں کتنی کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک بالک سامنے آ گیا تو اپنا بھوشیہ تو پورا ہو نہیں پایا, اس کا سامنے آ گیا. پھر جو دوڑ میری تھی وہ اس کی پرارمبھ ہو گئی گھر کے اندر. تو دھیرے دھیرے کر کے بیچ میں اور بڑی بڑی گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں. کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی روگ لے کے ہی پیدا ہوتا ہے, کوئی بیچ میں روگی ہو جاتا ہے, پریوار کا پریے وقت کسی کی حالت بگڑ جاتی ہے, کسی کی فائنینشیل حالت بگڑ جاتی ہے, کسی کے دیش کی گورنمنٹ پلٹ جاتی ہے, وہاں طرح طرح مچ جاتی ہے, پتا ہی نہیں دنیا میں کیا ہو جاتا ہے. تو ہر استھتی میں آپ دیکھیے کہ انشچے ہی انشچے ہے, یہاں نشچت کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے سہجو بھائی کہہ رہی ہیں, کوئی تو تن من دکھی کوئی چت اداس, ایک ایک دکھ سون کو سکھی سنت کا داس. جو ویکتی سنت کی شرنگت ہوا ہے, سنت کو جس نے گرو بنایا اور اس کی طرف دیکھ کر اس کے انوسار چلتا ہے, اسی کے جیون میں سکھ کی آشا ہے بس. کیونکہ اس کو وہ سکھ ملے گا, دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ سکھ چھین نہیں سکتی. اور میں جس سکھ کی دوڑ میں شامل ہوں, میرا سکھ کبھی بھی مٹیا میٹ ہو جاتا ہے, کبھی بھی. دو منٹ بھی نہیں لگتے اس کے لیے, دو منٹ کا ٹائم بھی بہت لمبا ہے, سیکنڈز میں یہ ساری دنیا ہماری چھن جاتی ہے. تو اتنے چھنک سکھ کے لیے ست پرش آپ کو کیسے پریرت کر سکتے ہیں کہ تو سنسار میں پھنسا رہا ہے, کیسے پریرت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے وہ سارے گھٹنا کرم کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں, کمپلیٹ یہ کیا پکچر ہے. ہم ایک ایک سال ایک ایک دن کر کے دیکھتے ہیں کہ شام کو بڑی خوشی ملے گی, دعوت کھانی ہے. کوئی بالک کہتا ہے کہ دن بھر چھلانگیں مارتا ہے, شام کو پکچر دیکھنی ہے. تو چھوٹے چھوٹے سکھ کی آشا میں وہ لگا رہتا. تو پوری لائف کو ایک پکچر کر کے ستپرش دیکھا کرتے ہیں, وہی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو سمتا ولاس مہاراج جی نے بھی یہی کام کیا. جہاں سے ہمارا جیون سانسارک شروع ہوتا ہے, اس کے لیے انہوں نے بھوگ باد استھتی ارتھات جو سانسارک سکھ کی تلاش میں منشیہ جی رہا ہے, اس کی کیا استھتی ہے اور کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے, وہ سارا کا سارا بھوگ باد استھتی میں انہوں نے لکھ دیا. تو یدی آپ اپنے واستوک جیون کا درشن کرنا چاہتے ہیں سانسارک جیون کا, تو بھوگ باد استھتی کے چیپٹر کو آپ دھیان سے پڑھیے. اور جو انالیسس ستپرش نے پیش کیا ہے, اور یہ انالیسس ویدک کال سے رشیوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے, ویدک کال میں ہی مانڈو کے اپنیشد میں لکھ دیا گیا تھا. گوڑپاد کاریکا کہہ رہی ہے اس کی, دکھم سربم انسمرتیہ کام بھوگان نورتیت, مت بھولو کہ سب کچھ دکھ ہی ہے. اس لیے کامناؤں اور بھوگوں سے نورتی پراپت کرو, तो मनुष्य जीवन का मार्ग क्या है? कामनाओं और भोगों से तुम्हें निवृत्ति प्राप्त करनी है। क्यों प्राप्त करनी है? क्योंकि जिसमें परमानेंट सुख है, जिसको ईश्वर कहते हैं, उसमें तेरा प्रेम होना चाहिए। तो इसमें जब तुझे दोष दिखाई पड़ेगा, इसमें जब तुझे अपना जीवन का नुकसान दिखाई पड़ेगा, मन की बेचैनी दिखाई पड़ेगी, तभी तो ईश्वर से प्रेम करने के लिए तेरे अंदर मन में डिजायर पैदा होगी। क्योंकि मैं चाहता तो प्रेमी, चाहता तो हूं परमानंद सुखी, चाहता हूं संतोष जो संसार में है नहीं। तो इसका जब तक एनालिसिस मेरा पूरा नहीं होगा, तब तक मेरे मन में ईश्वर के प्रति राग या ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे पैदा हो सकता है? विचार करते रहते। किसी के कहने से आप सिमरन करने बैठ भी जाओ तो क्या कर पाओगे सिमरन? 10 साल तक यही शिकायत करते रहोगे, बड़ी कोशिश की मैंने, एक एक घंटा सुबह शाम बैठा, दो दो घंटे भी बैठा, लेकिन मन मेरा संसार में घूम रहा है। क्योंकि बुद्धि का निशा तो बदला नहीं आपकी, बुद्धि तो अभी भी यही कह रही है कि संसार में सुख है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए सत्पुरुषों ने जैसा लिखा है, जैसा उन्होंने समझा है संसार के बारे में, वो आपसे झूठ तो नहीं बोलेंगे। उन्हें क्या लालच है बताओ? संसारी तो झूठ बोल सकता है, माता पिता भी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि माता पिता भी संतान क्यों चाहते हैं? कोई माता पिता संतान के सुख के लिए संतान नहीं चाहता, हर माता पिता संतान चाहता है अपने सुख के लिए, ये ना भूले। तो अब बताइए कितने माता पिता को संतान वास्तव में सुख दे पाती है? कोई भाग्यशाली माता पिता होगा जिसको जीवन में संतान सुख मिलता होगा? ज्यादातर तो घरों में संतान की जिम्मेदारियां पूरी करते रहते हैं माता पिता। और आजकल जो भोगवाद जब बढ़ गया है, तो जब बच्चे जवान होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो माता पिता उनके लिए बोझ बन जाते हैं। अंदर से यही सोचते हैं कि ये किसी या तो अलग रहें कहीं, या फिर जो है इस संसार से विदा हो जाए। आजकल के भोगवादी युग में मन में यही कल्पना बनी रहती है। इसलिए यूरोपियन कल्चर आप देख लीजिए, वहां बूढ़ों के घर में कोई जगह नहीं है। भारत में अभी भी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि यहां ऋषियों की धरती है, कुछ संस्कार बचे हुए हैं यहां पर, लेकिन सत्य यही है। कौन प्रेम करता है? जिस देश में, जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस परिवार में भोगवाद बढ़ेगा, वहां मानव प्रेम कम हो ही जाएगा, क्योंकि प्रेम सेक्रीफाइस मांगता है। मां यदि बच्चे को प्रेम देती है, कितना सेक्रीफाइस करती है, कितना त्याग करती है, विचार करके तो देखो कि पूरी जिंदगी बच्चा यदि मां की सेवा करे, तब भी उसके मां का ऋण उतार नहीं सकता वो बच्चा। लेकिन उसको होश ही नहीं है कि मैं मां का ऋणी हूं, कहां होश है बच्चों को। तो इसीलिए हमारे पास वो आंख ही नहीं है जिस आंख से इस संसार को देखा जाना चाहिए। वो आंख ऋषियों के पास है। इसलिए यदि मैंने संसार को सही देखना है, अपने जीवन को सही देखना है, तो मैंने गुरु की आंख से अपने जीवन को, संसारी जीवन को देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं, घोर अज्ञानी, मन के वशीभूत होकर जी रहा हूं, बुद्धि की आंख तो मेरी है ही नहीं। तो इसीलिए मां जी कहते हैं, प्रेमी जिसने इस भोगवाद के विश्लेषण को समझ लिया, उसके अंदर फिर विवेक आता है, अर्थात जिंदगी की असली समझ आती है। उसको फिर ईश्वर का विज्ञान भी समझ में आता है, क्योंकि जीना तो उसने है संसार में, बचाने को जीने के लिए। जब भोगवाद पढ़ेगा, वो समझेगा, उसको कहेगा संसार में तो हर चीज का जो रिजल्ट है वो तो दुख है, बेचैनी है, असंतोष है, जैसे जिंदगी का अंत मौत है, जवानी का अंत बुढ़ापा है, स्वास्थ्य का अंत रोग है, यहां तो हर चीज का अंत जो है वो अपोजिट ही जा रहा है। तो इसीलिए मां जी कह रहे हैं कि हर सुख दुख में बदल जाता है, तो सुख का अंत भी दुख है, तो हाथ क्या लग रहा है इसके? तो इसीलिए इसको फिर ईश्वर की बात सिखाई जाती है कि भाई इस संसार में जो दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर ईश्वर भी तो है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके काम दिखाई पड़ रहे हैं। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन उसके काम दिखाई पड़ रहा है। जितनी दुनिया में काम हो रहे हैं, जितनी प्रकृति में काम हो रहे हैं, आप में मनुष्य के काम गिन लो और प्रकृति के काम गिन लो, मनुष्य फेल हो जाएगा, प्रकृति के काम बड़े नजर आएंगे। मनुष्य के काम के बिना मनुष्य जी सकता है, प्रकृति के काम के बिना मनुष्य नहीं जी सकता। सूर्य ना चमके से मनुष्य जिएगा? वनस्पति नहीं होगी, पैदा होगी क्या खाएगा? ये पानी नहीं होगा तो जिएगा? ये वायु नहीं होगी तो क्या ये जिएगा? और सब चीज ठीक चल रही। और प्रकृति का निजाम देखो, धरती घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर अपने कीड़ी पे लगाती नहीं लगाती है? 24 घंटे में एक बार धरती घूमती है, धरती सॉलिड है, धरती के साथ पानी भी घूमता है। लेकिन ये कैसी बात है, जो चीज धरती से अलग है वायु, धरती घूम जाए वायु उसके साथ ना घूमे तो आप एक सेकंड में उड़ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा धरती को। कितने किलोमीटर तक वायु है ऊपर, लेकिन सारी की सारी वायु इस ठोस धरती के साथ ही घूमती है। धरती घूम जाए वायु ना घूमे तो किस स्पीड से धरती घूम रही है? धरती का सर्कमफ्रेंस कितना, जरा डिवाइड करके देख लो कि कितने किलोमीटर की स्पीड से धरती घूम रही है। इतने किलोमीटर की स्पीड से यदि आंधी आ जाए तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए कुदरत की करनी है ये कि वायु भी धरती के साथ ही घूम रही है, इसलिए हम बचू। मनुष्य का क्या रोल है इसके अंदर बताओ? तो प्रकृति के कर्म हमको दिखाई पड़ रहे हैं और अपने कर्म कर करके हम अहंकारी होते चले आ रहे हैं। अपने कर्म के कारण, अपनी मेहनत के कारण मैं जी रहा हूं, नहीं तो नहीं जीऊंगा ही नहीं, मेरा परिवार भी नहीं जिएगा, इतना अहंकार है। तो ये कुदरत तो ईश्वर के अधीन है, कुदरत भी स्वतंत्र नहीं है। महाराज कह रहे हैं समता के बगैर तो एक कण भी नहीं है। तो अब बताइए मुझे, एक एटम से लेकर और सारे ब्रह्मांड तक, समझिए सब कुछ ये प्रकृति के अधीन है और प्रकृति ईश्वर के अधीन है, या यूं कह ले कि ईश्वर की ही प्रकृति है। तो अब बताइए कि मनुष्य का क्या रोल है इसके अंदर? इसका तो अहंकार ही अहंकार है। तो इसने जो पुरुषार्थ किया है, इसने जो कर्म किया है, उसकी तरफ इसने सही रूप में देखा तक नहीं। इसकी जो करनी है, ये सत्पुरुष इसको आईना दिखा रहा है इसकी करनी का। तू अपनी करनी के द्वारा किस मुसीबत में फंस रहा है, तुझे होश नहीं है। इसीलिए गुरु की बात जब हम उसी के तरीके से समझते हैं, वो झूठी कहानियां नहीं पढ़ाता हमको, वो सत्य बात बताता है। इसीलिए महाजी का जो समता विलास है, वो वैदिक काल से आप वेद उठा के देख लो, वही बात मिलेगी जो समता विलास में है। इसका मतलब ऋषि तो झूठ नहीं बोलेंगे, कोई स्वार्थी नहीं, वही ऐसा है गुरु जो केवल आपके कल्याण की सोचता है और आपसे कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। महाजी फटी जूती पैर में पहने हुए हैं, कोई प्रेमी जूती लाके दे भी देता है उनको तो कहते हैं प्रेमी अभी इसमें सिलाई करके ये एक महीना और चलेगी, दो महीने और चलेगी, अभी इनको जरूरत नहीं है, वापस कर देते थे। महर्षि रमण एक कोपीन बांध के रहते थे, एक उनके पास तौलिया का टुकड़ा था या किसी ने दे दी थी एक पतली सी तौलिया, तो उसी से शरीर पोछ लेते थे वो। जब वो फट गई तो उसकी उन्होंने बॉल बना ली, उसी से पोछ लेते थे, और फिर वो बॉल जो है पेड़ की खो में रख देते थे ताकि कोई देखे ना कि इनकी तौलिया फटी हुई है, नहीं तो देख लेंगे फटी हुई तो देना चाहेंगे लोग कि महर्षि ये तौलिया फट गई है ये ले लो, लेकिन चाहिए नहीं। जो गुरु है उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, कुछ आशा ही नहीं करता, तो झूठ क्यों बोलेगा आपको, बहकाएगा क्यों? इसलिए गुरु की बात को भी समझने की कोशिश नहीं करना, इससे बड़ी अज्ञानता हमारी क्या होगी, इससे बड़ी बेवकूफी हमारी क्या होगी। ऐसे गुरु की बात को हम गहराई से समझने की कोशिश ना करें, इससे बड़ी मूर्खता कोई भी नहीं। तो इसीलिए महाजी फिर इसको शुद्ध विवेक लिखते हैं। तो शुद्ध विवेक क्या है? बस एक ही है कि संसार की हर चीज नाशवान है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, तेरी देह भी नाशवान है, तेरी देह के नाश के साथ तू नाश नहीं होता, इसलिए तू अपनी सोच। दुनिया वाले तो ये समझे मर गया चलो पिंड कटा, लेकिन गुरु कहता है देह की नाश के साथ तेरा नाश नहीं होता, सारे संस्कार सारे कर्मफल तेरे साथ ही जाते हैं। तो तू सोच अपने भविष्य की, क्योंकि तेरे चारों तरफ फिर देह खड़ी हो जाएगी इमीडिएटली, बिना एक सेकंड के भी गैप के तुरंत ही, जैसे आंख लगते ही स्वप्न खड़ा हो जाता है, ऐसे ही तेरी देह खड़ी हो जाएगी। और सारे कर्म जो करके आया है, जो संस्कार बनाए हैं, अब इस शरीर में रेडीमेड मिलेंगे। ये आपको हर बालक के जीवन से जन्म से ही पता लग जाता है कि हर बालक का जन्म से ही स्वभाव अलग तरीके का होता है। इसलिए सबको इंजीनियर नहीं बनाया जा सकता पैसे के बल पर, सबको डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता पैसे के बल पर, सबको शरीफ आदमी नहीं बनाया जा सकता। उसके संस्कार उदय होंगे, उसको वही करने के लिए प्रेरित करेंगे जैसे उसने कमाई करके आया पिछले जन्म। तो इसीलिए जब विवेक आपके अंदर आता है, तब आपको ये जो संसार है, ये जो लोग हैं, ये जो वस्तुएं हैं, जिनको सुख की दृष्टि से आप देखते हो, आपको समझ आती है कि सुख यदि कहीं है, चैन यदि कहीं है, तो वो ईश्वर में है। तो संसार के मुकाबले में आपको फिर ईश्वर का विश्वास, ईश्वर का निश्चय आपके अंदर आता है, और अंदर से संकल्प करते हो, प्रतिज्ञा करते हो या निश्चय करते हो कि मैंने ईश्वर को जानकर ही छोड़ना है। जिसमें स्थायी सुख है, जिसमें स्थायी जीवन है, एक क्लेश का लेश मात्र भी नहीं बचता बाकी। तो महामन की वाणी कह रही है, कलह क्लेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत्व, कि कलह क्लेश सारे ही खत्म हो जाते हैं और ज्ञान तत्व अर्थात ईश्वर से तेरी भेंट हो जाती है, ईश्वर से तेरा मिलन हो जाता है। तो अब बताइए, वाणी गारंटी दे रही है, संसार गारंटी ले सकता है आपसे? तेरी मौत नहीं होगी, तेरे जीवन में दुख कभी नहीं आएंगे, कोई गारंटी ले सकता आपसे? कोई नहीं लेगा। पूरी दुनिया में बड़े से बड़ा ज्योतिषी ये गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन गुरु गारंटी ले रहा है, एक भी कलह क्लेश तेरा बाकी नहीं रहेगा, स्थायी सुख मिलेगा, स्थायी आनंद मिलेगा, स्थायी शांति मिलेगी। तो हम गुरु की बात क्यों ना माने फिर? तो जब गुरु की बात मानते हैं, विवेक हमारे अंदर आता है, भोगवाद के द्वारा हमने समझ लिया कि भोगवाद का नतीजा परम दुख है, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो परम दुख है। तो फिर वो तीसरी चीज सीखता है कि संसार के सुख वास्तव में ये दुख रूप है, क्योंकि इनका जो परिणाम है ना, जो मन के ऊपर इसका असर पड़ता है, वो जहर के समान है। इसलिए महाजी ने संतावलास में लिखा, ये संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है परंतु अंदर से विष रूप है। किसी विष की गोली पे सुगर कोटिंग हो तो खाने में तो मीठी लगेगी, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा उसका? शरीर को खत्म कर देगी। तो ये संसार भी है तो जहर की गोली, लेकिन सुगर कोटिंग चढ़ी हुई है, थोड़ा सा सुख इसको भोगते वक्त दिखाई पड़ता है। इसीलिए जिस जिसने इसको संसार को भोगता है, उसका जीवन विष रूप हो जाता है, पांच विकार से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े अरबपति इतने बेईमान हो जाते हैं कि हजारों करोड़ गवर्नमेंट का रुपया लेके भाग जाते हैं। अरे गरीब किसी का पैसा लेके भाग जाए बात समझ में आती है, भूख के वशीभूतों के बेचारे ने चोरी कर ली, लेकिन जिसमें हजारों करोड़ की संपत्ति ऑलरेडी है, वो हजारों करोड़ का गवन करके भाग जाता है, ये कहां बात समझ में आती है? इसका मतलब जितना सुख भोगा उतना बेईमान हो गया, जितना संसार में पैर फैला है उतना ही लालची हो गया वो। इसीलिए संसार के भोग मनुष्य के अंदर पांच विकार बढ़ा देते हैं। इसीलिए माई कहते हैं, प्रेमी संसार में काम चलाने वाली बात करो। शरीर दिया है भगवान ने, गृहस्थी दी है, तो उसकी कुछ आवश्यकताएं भी होंगी, बस उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए इतना सोचो। बाकी तो प्रभु चला रहा है, तुम नहीं चला रहे हो। प्रारब्ध का जो पैकेज दिया है प्रभु ने भोगने के लिए, उसकी व्यवस्था प्रभु खुद कर रहे हैं, और सारी परिस्थितियां उसके आगे आएंगी, आप चाहो भी तब भी नहीं उसको मिटा सकते आप। तो इसीलिए तुमने सोचना तो है ही, तेरा कर्तव्य भी बनता है, वो कर्तव्य भी दिया है तुझे, तो तू कर्तव्य के नाते उनके लालन पालन की सोच, बड़ा बनाने की मत सोच। बड़ा बनाना है प्रभु बना देंगे उसको। तो बेसिक नीड्स हैं उसकी पूरी करना तेरा कर्तव्य बनता है, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। लेकिन आगे फिर भोगवाद बढ़ जाता है, उसकी सोचना छोड़कर तो ईश्वर की सोच। तो ये जो संसार के भोग हैं ये पांच विकार बढ़ाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और पांच विकार में मनुष्य कितना जलता है, कितना बेचैन होता है, ये प्रैक्टिकली आप देखते हो। नहीं तो वाणी ये कहती ही नहीं कि पांच विकार महादुखदाई जले सकल संसार, सारा संसार जल रहा है। और इसका इलाज क्या है? कहते हैं इलाज है परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। इन पांच विकारों से जीव छुटकारा पा ही नहीं सकता यदि उसके अंदर ईश्वर के प्रति प्रीति नहीं है, परमार्थ के रास्ते पर चलने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं है या समझ नहीं है। तो अब बताइए, बच्चे के लालन पालन में ये चीज, ये शिक्षा देना, ये था अमृत, ये अमृत था जो माता पिता ने बच्चों को पिलाना था। और माता पिता क्या पढ़ा रहे हैं आजकल बच्चों को? जिसको देखो मैं बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा, जिसको भेजो कि मैं फॉरेन भेजूंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसी में दौड़ में लगे पड़े ना। बच्चों को जीने दे रहे हैं ना, खुद जी पा रहे हैं, एक ही दौड़ है, जहां देख लो एक ही दौड़ है। तो इसीलिए जब ये आदमी सीखता है तो उसके अंदर शुद्ध वैराग्य आता है, अर्थात संसार में सुख है ही नहीं। सुख का मतलब ये ना समझ ले, जैसे एक दिन प्रेमी प्रश्न कर रहा था कि हम जब जलेबी खाते हैं तो सुख मिलता है, तो जलेबी खाओगे तो सुख मिलेगा, इसको ये डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो सत्पुरुष परिणाम की बात करते हैं। सुख मिलता है तो कितना क्षणिक सुख मिलता है, एक जलेबी खाओगे मुंह में कितनी देर रहेगी वो, उतना ही तो सुख मिलेगा। और जब से सोचोगे उसके बारे में, जब से मार्केट से बनवा के लाओगे उसको, उसके लिए पैसा कमाओगे, फिर हजम करोगे, उसमें सुख है क्या? सुख तो बड़ा क्षणिक है इसके अंदर, और दुख लंबा है। और आदत पड़ गई तो जिंदगी भी ले सकती है वो, एक आइटम आपकी जिंदगी भी ले सकता है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसके फल की ओर देखता है, इसका परिणाम क्या होगा, क्षणिक सुख की ओर नहीं देखता। जो मूर्ख है वो क्षणिक सुख की ओर देखेगा, परिणाम को भूल जाएगा। जैसे चोर चोरी करता है सुख मिलेगा, परिणाम को भूल जाता है कि जेल भी तो हो सकती है। तो इसीलिए जो व्यक्ति सद्गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार विचार करता है उसके अंदर वैराग्य आ जाता है, संसार के प्रति राग उसका भंग हो जाता है, नफरत नहीं हो जाती। देखो नफरत चीज दूसरी है, उसके अंदर से राग खत्म हो जाता है, वो फिर संसार में काम चलाता है। पैसा चाहिए तो जोड़ने के लिए नहीं चाहिए उसको, मालूम है कि जो कुछ भी घर की व्यवस्था है ठीक प्रकार चलती रहे, बस इसलिए पैसा चाहिए, बस इतनी इसलिए पैसे की याद आती है, इसलिए कमाता है। दिल से जो है वो ईश्वर के प्रेम की कमाई करता है, ईश्वर के नाम की कमाई करता है, ईश्वर से मिलने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जब तक ये वैराग्य अंदर ना हो, आपको दिल से ईश्वर की याद कैसे आएगी, तड़प के साथ ईश्वर की कैसे याद आएगी? तो इसीलिए वैराग्य के बिना ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। और वैराग्य पैदा होता है विवेक से, और विवेक पैदा होता है जब गुरु के कहने के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जब संसार के बारे में सोचते हैं, जैसी उसकी वास्तव में स्थिति है वैसा ही जब सोचते हैं, तो हमारे अंदर विवेक आता है, और उस विवेक के प्रकाश में वैराग्य आता है, और वैराग्य के प्रकाश में हमारे अंदर नाम चला करता है, नाम का स्मरण प्रेम से हुआ करता है, तब जाकर ये जीवन सफल होता है। ओम ब्रह्म सत्यम।